नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने सामुदायिक विकास की चार परियोजनाओं को लागू करने के लिए मार्शल आइलैंड्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए दी बधाई। गृहमंत्री अमित शाह ने असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावनाएं व्यक्त की है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर कोपा अमरीका चैंपियनशिप रिकॉर्ड 16वीं बार जीता। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और मार्शल आइलैंड्स का मैत्रीपूर्ण आपसी संबंधों का लंबा इतिहास है, जिनका वर्षों के साथ विस्तार हुआ है। मार्शल आइलैंड्स में सामुदायिक विकास की चार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में यह आइलैंड्स केवल छोटे द्वीप नहीं है, बल्कि विशाल समुद्री देश है। उन्होंने कहा कि सतत विकास की खोज में प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों को समर्थन देना भारत अपनी जिम्मेदारी मानता है। विदेश मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य देखभाल साझा चुनौतियां हैं, जिनसे भारत और मार्शल आइलैंड्स को मिलकर निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत को इस संबंध में प्रशांत द्वीपों का साझेदार होना विशेषाधिकार है। नेपाल में श्री केपी शर्मा ओली ने आज चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडल ने उन्हें राष्ट्रपति भवन की मुख्य इमारत शीतल निवास में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडल ने नवनियुक्त 21 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। श्री ओली के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में एनसी, यूएमएल, जनता समाजवादी पार्टी जेएसपी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी एलएसपी के मंत्री शामिल हैं। नेपाली कांग्रेस के प्रकाशमान सिंह और सीपीएन यूएमएल के विष्णु प्रसाद पोडल को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति पोडल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत कल सीपीएम, यूएमएल और नेपाली कांग्रेस गठबंधन के नेता चुने गए श्री ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच मित्रता के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने तथा द्वीपक्षीय सहयोग और आपसी हित को और बढ़ावा देने के लिए वे मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आरजू राणा देउबा को नेपाल के विदेश मंत्री बनने पर बधाई दी है। अपने संदेश में डॉ जयशंकर ने कहा कि वह भारत और नेपाल की बहुमुखी साझेदारी को बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने की उत्सुक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वे चाहती है कि भारत तीस्ता परियोजना को लागू करे। उन्होंने हाल ही चीन यात्रा के बारे में ढाका में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि चीन ने तीस्ता परियोजना के बारे में कुछ प्रस्ताव दिए हैं और इसे लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने भी प्रस्ताव दिए हैं और वो भी इसे लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए भारत को प्राथमिकता दी जाएगी। शेख हसीना ने कहा कि भारत तीस्ता के पानी से जुड़ा है, इसलिए उसे यह परियोजना लागू करनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि भारत आगे बढ़ा तो बांग्लादेश उसे सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियां हैं। दोनों देश बाढ़ प्रबंधन, अग्रिम चेतावनी और पेयजल परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा के लिए सहमत हुए थे। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिश्री ने आज विदेश सचिव का कार्यभार संभाला। उन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया जिनका कार्यकाल कल समाप्त हुआ था। श्री मिश्री 1989 बैच के अधिकारी हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। श्री मिश्री ने चीन, म्यांमार और स्पेन में भारतीय दूत के रूप में भी काम किया है। वे तीन प्रधानमंत्री 1997 में इंद्र कुमार गुजराल, 2012 में मनमोहन सिंह और 2014 में नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने इन राज्यों में बढ़े हुए जलस्तर के बारे में जानकारी ली। गृहमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की आंधी और बिजली गिरने के साथ मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने बताया कि कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय कर्नाटक और कर्नाटक के दक्षिणी अंदरूनी इलाकों तथा केरल के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अत्यधिक वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में कल से मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। रायगढ़, रत्नागिरी, जलगांव, औरंगाबाद और जलना जिलों में तेज वर्षा और आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों, विशेषकर सूरत, भरूच और नर्मदा जिलों में आज मूसलाधार बारिश हुई। गुरुदेश्वर, टिकलवाड़ा, नतरंग क्षेत्रों में भी आज सुबह तेज वर्षा हुई। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और कच्छ जिलों में 30% से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात के दूरदराज के इलाकों में तेज से बहुत तेज वर्षा, जबकि मध्य और दक्षिण गुजरात में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल में मौसम विभाग ने आज मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड और वायनाड जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। वहां अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जिलाधिकारियों ने पलक्कड़ जिले को छोड़कर बाकी जिलों के सभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी है। राज्य में विश्वविद्यालय और अन्य परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने की 18 तारीख तक केरल तट और लक्षद्वीप क्षेत्र के आसपास 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की कीमतें बढ़ने को लेकर प्रदर्शन किया। हाल ही में बिजली वितरण कंपनियों ने दिल्ली में बिजली खरीद समायोजन शुल्क को 6.75% से बढ़ाकर 8.75% कर दिया था। भाजपा नेताओं ने आज दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ तख्तियां लहराते हुए नारे लगाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की। रत्नागिरी क्षेत्र के दीवाना खावटी विन्हेरे खंड के बीच भूस्खलन के कारण कोंकण में रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। यह घटना कल शाम की है। इस कारण लोकमान्य तिलक तिरुवनंतपुरम सेंट्रल नेत्रावती एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक मंगलुरु सेंट्रल एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। 5 अन्य ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और 2 अन्य ट्रेनों के स्टेशनों में बदलाव किया गया है। कोंकण रेलवे के अनुसार नवी मुंबई मुख्यालय वाले कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेल सेवा बहाल करने के काम में लगे हैं। गुजरात में आनंद के निकट अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर आज सवेरे एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग घायल हो गए। एक ट्रक के चिकोरा गांव के निकट एक बस से टकराने से यह दुर्घटना हुई। घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान की जा रही है। अर्जेंटीना ने आज सुबह कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमरीका चैंपियनशिप जीती। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में लोटेरो मार्जिनेज ने अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में विजय गोल किया। लोटेरो मार्टिनेज ने कोपा अमेरिका गोल्डन बूट जीता। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 5 गोल लग किए। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16 बार कोपा अमेरिका खिताब जीता है। अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में फीफा विश्व कप जीता था। देश में थोक मुद्रास्फीति में लगातार चौथे महीने वृद्धि देखी गई। खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से सब्जियां और विनिर्मित चीजों की कीमतों में वृद्धि के कारण जून से थोक मुद्रास्फीति 3.36% रही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।